हरे कृष्ण। आज के इस प्रवचन श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार अगर भगवान की सुंदर लीलाएं खीर जैसी है तो उसके अंतर्गत जो सिद्धांत हैं वो कर्पूर और इलायची जैसे हैं, जो भले अपने आप में कड़वा लगे पर जब वो लीला के साथ श्रवण करते हैं तो बहुत ही सुगंधित और आस्वादित लगता है। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में छठे अध्याय में जहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी अद्वैताचार्य की महिमा बता रहे हैं वहां वो कहते हैं कि किस प्रकार अद्वैताचार्य जो साक्षात महाविष्णु के अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु जो भगवान के प्रथम विस्तृत स्वरूप है, वो भी जब भगवान के सेवक के रूप में उस भावना को अनुभव करते हैं सेवा का, तो अपने भगवत्ता को भी भूलकर वो दिव्य आनंद लेते हैं। अंत में भगवान साक्षात श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी की भावना को स्वीकार करके श्री राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, इतना आनंद और संतुष्टि रुचि भक्तिमय सेवा में है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला जो तत्व हमने चर्चा किया वो ये था, किस तरह से हमें भगवान के सेवक के रूप में जो भावना है, हृदय की जो भावना है, वो हमें प्राप्त करना है। और अगर हम केवल कहेंगे कि हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण में विश्वास करते हैं बुद्धि के स्तर पर, वो हमें संतुष्टि, हृदय की जो संतुष्टि है, हृदय में जो आनंद अनुभव करना है, वो नहीं दे पाएगा। जब तक हम भगवान के प्रति प्रेम अनुभव नहीं करेंगे और वो सेवा का अनुभव नहीं होगा, तो हमने ये भी चर्चा किया कि इस भक्तिमय भाव जो है, भक्ति भाव हृदय का, इसका इसके शत्रु कौन है? राग भय क्रोध, भौतिक संसार से आसक्ति या भौतिक कर्म। भक्ति कर रहे हैं पर कुछ भौतिक इच्छा से अगर कर रहे हैं तो तीन गुणों के अंतर्गत होने के कारण, दूषित होने के कारण, उस स्वाद पूर्ण रूप से हमें संतुष्ट नहीं करता, आनंदित नहीं करता। तो ये ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, कर्म से ऐसे भौतिक इच्छाओं से रहित होकर और फिर निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी, निर्विशेषवाद जहां भगवान के अस्तित्व, हमारा खुद का अस्तित्व, व्यक्तित्व और प्रेममय संबंध, इसको माया समझकर नकार दिया जाता है वो, या पूर्ण रूप से निराश होकर, क्रोधित होकर, सब कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं, इस इच्छा को नष्ट कर दो, ये एक प्रकार का है। तंग आकर भोग करने का प्रयास किया, तंग आ गए, इसीलिए हम अभी कुछ नहीं, इच्छा को ही खत्म कर दो। ये दोनों जो है सबसे बड़े शत्रु हैं। और अंत में हमने ये भी चर्चा किया कि किस प्रकार हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी षड गोस्वामी है उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल हमें महाप्रभु के बारे में श्रद्धा बढ़ाया है, गोविंद गानामृते उसका आस्वादन कराया है, बल्कि ऐसा ये कथा दिए हैं कृष्ण के बारे में ज्ञान, पापोताप निकृंतनो, ये करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म संचित रूप में हमारे हृदय में उसको भी नष्ट कर देते हैं, और एक ऐसा सुंदर तरीका दिए हैं जिस सेवा में, जिन सेवाओं में, भक्तिमय सेवा में अगर अपना पूर्ण रूप से हृदय लगाए तो ये भक्ति भाव, ये सेवा भाव, जो सेवक हम सेवक हैं कृष्ण नित्य दास, इसका अनुभव कर सकते हैं और इसका आस्वादन ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर से उन्होंने एक चीज बताया, वो कहते हैं कि चैतन्य लीला मतलब क्या, चैतन्य लीला साफ साफ ये दर्शित करता है कि भगवान के सेवक होना जो है, ये पदवी जो है, इससे श्रेष्ठ इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। जो आनंद भगवान की सेवा में है, सेवक के रूप में जो सेवा हम कर रहे हैं, उस आनंद से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। एक तो भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर आते हैं, सेवक का रूप आनंद लेते हैं, और दूसरा महाप्रकाश में लीला में भी हम देखते हैं जब उनके पार्षद, नित्य पार्षद, शाश्वत और महान भक्तों से महाप्रभु पूछते हैं, भगवान पूछ रहे हैं मांगो, क्या चाहिए मांगो, और सेवा के अलावा और कुछ नहीं मांगते वो। एक बार अगर इस तत्व को हम समझ जाएंगे तब कृष्ण के प्रति जो हमारा आकर्षण है बढ़ेगा, और तब शायद कृष्ण भावना में टिके रहेंगे, भविष्य में कुछ प्रेरणा मिलेगी कि हाँ 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी प्रगति होते रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे कृष्ण भावना में। और इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नाहे तारा एक बिंदु। कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु, कृष्ण के दासत्व के अभिमान में उस स्वीकार करने से जो आनंद का सिंधु का अनुभव होता है, कोटि ब्रह्म सुख, ब्रह्म में लीन होने का जो सुख है उसका कोटि गुना भी बढ़ा दो, उसका एक बिंदु की तुलना में नहीं है। ये श्लोक शायद कई बार हमने सुना है पर इसका मतलब हम नहीं समझते, क्योंकि कोई एक भिखारी को कहो कि 1 करोड़ रुपए चाहिएगा, और नहीं चाहिएगा, उसको 1 रोटी चाहिए अभी बस, क्योंकि वो करोड़ समझ भी नहीं सकता है कि उसमें कितना शून्य आता है। इसी तरह से हम जो थप्पड़ खा रहे हैं माया से, हमको बोलो मुक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, पर हमारा सारा कार्य मुक्ति के पीछे है, बड़े पैमाने की मुक्ति नहीं, कम से कम छोटी मोटी मुक्ति तो चाहिए महाराज। क्यों हर एक व्यक्ति इस दुनिया में पैसे के पीछे है, क्यों, क्यों इतना, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से मुक्ति चाहिए ना, सबको गर्मी से मुक्ति चाहिए, क्यों, कैसे, एसी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, हमको मुक्ति चाहिए गर्मी से, ठंडी से मुक्ति चाहिए, हीटर लगाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए। क्यों पैसे, हमको पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, मुक्ति चाहिए ठंडी से, और वो करने के लिए कुछ चाहिए हमको वस्तु। या कोई कहता है गरीबी से मुक्ति चाहिए, कैसे, जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए, फिर हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, पर जो चाहिए जब चाहिए मिल जाना चाहिए। बीमारियों से मुक्ति चाहिए, बीमारियों से मुक्ति, बीमारी अच्छा नहीं लगता हमको, जल्दी जल्द से दूर करने के, उसके लिए दवाई चाहिए, दवाई के लिए प्रयास करना चाहिए। दर्द है, दर्द से मुक्ति चाहिए, भूख से मुक्ति चाहिए, प्यास से मुक्ति चाहिए, बुढ़ापे से मुक्ति चाहिए। किसी का बहुत पैसा है तो चलेगा, कम से कम बुढ़ापा भी चलेगा, चार पांच नौकर हमेशा घूमते रहते हैं, कई एक ऐसे बुढ़ापे हो ऐसे घर में डाल देते हैं जहां बूढ़े लोग रहते हैं, और वहां 10 सेवक उनके, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, उठाने के लिए, ले जाने के लिए, घुमाने के लिए। तो कम से कम मुक्ति मतलब चिंता नहीं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, आराम से सब काम चल रहा है। तो हर एक व्यक्ति सूक्ष्म तरीके से देखे तो मुक्ति के पीछे है, भले बड़े पैमाने पे हम, क्योंकि हम नहीं समझते हैं उसकी गंभीरता को, वो तो दूर की बात। हम जिस तरह से दिखते हैं उसे भी मुक्ति चाहिए हमको। कोई व्यक्ति इस दुनिया में मैं कैसा दिखता हूं उससे संतुष्ट नहीं है, और ये असंतुष्टि कैसा पैदा करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री करती है। कोई अच्छा मिस यूनिवर्स को दिखा देना या हट्टा कट्टा व्यक्ति को दिखा देना और बोले तुम लोग इतने लुकड़े लग रहे हो, छी बदलो, बाल थोड़ा बदलो, नाक थोड़ा बदलो, कान ऐसा पीछे करो, दांत अंदर करो, कुछ तो करो, मतलब असंतुष्टि पैदा कर देना, तुम जैसे हो वो ठीक नहीं है, उससे मुक्ति। और पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है इसी के पीछे चल रहा है, असंतुष्टि, मैं जैसा हूं उससे संतुष्ट नहीं हूं, उसे मुक्ति चाहिए मुझे, कुछ तो और। भूरिजन प्रभु ने एक बार बहुत अच्छा कहा था, हर बार हम इच्छा करते हैं ना, एक इच्छा, काश थोड़ा मैं लंबा होता, काश थोड़ा गोरा होता, काश मेरे बाल थोड़े घुंघरालू होते, या जिसका घुंघरालू है सीधे होते, या जिसका सीधा है उसका थोड़ा पतला होता, नाक थोड़ा सीधा होता, थोड़ा ये कर सकता था, थोड़ा और बुद्धिमान होता, थोड़ा ऐसा होता। हर बार हम सोचते हैं काश, और कुछ नहीं, थोड़ा। हम अगले जन्म का बीज बो रहे हैं, भगवान बोलते ठीक है तेरे को ऐसे चाहिए ना, ठीक है, और एक जन्म में लंबा होगा, इतना लंबा, काश थोड़ा मीडियम होता, और एक जन्म। इस तरह से वो कह रहे थे कि असंतुष्टि जो है, जिस तरीके से हम हैं, संतुष्टि न होने के कारण थोड़ा ना थोड़ा कुछ बढ़ता रहता है। और इस तरह से जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चक्कर चलती रहती है, और अंततः ये सबसे तंग आकर बोलते हैं, अभी इसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमेशा की मुक्ति दे दो मुझे, क्योंकि हो गया तो फिर शुरू हो जाता है श्रृंखला, इच्छाओं की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो इस तरह से भले हम कहें हमको मुक्ति नहीं चाहिए, पर सूक्ष्म तरीके से देखा जाए जिस स्थिति में हम हैं उससे हम थोड़ा मुक्ति चाहिए। परिस्थिति जो है, भौतिक संसार का निर्माण ऐसा किया गया है कि यहां हम सुखी रह नहीं सकते, द्वंद्वों का है, ठंडी और गर्मी, सुख और दुख, मान अपमान, कुछ ना कुछ रहेगा ही, कभी ये ज्यादा तो ये कम, ये ज्यादा तो वो कम। और जितना भी हम चाहे कि भौतिक संसार से मुक्ति मिले, उसको हजार लाखों गुना ज्यादा कीजिए। कुछ भी आपको अगर समझ लीजिए, आप जो इच्छा करते, मुझे इस चीज से मुक्त करो, ठीक है हो गया, इस चीज से मुक्त करो हो गया। भगवान पूछ रहे हैं तुमको क्या चाहिए बोलो, इस चीज से मुक्ति चाहिए, इस चीज से मुक्ति चाहिए। अगर पूछेंगे तो निश्चित रूप से हम मांगेंगे, पर जब शुद्ध भक्त को पूछा गया कि बोले नहीं प्रभु, आपका स्मरण और आपकी सेवा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले नरक में भेजो, कीट जन्म हो यथा तू या दास। हम मांगेंगे कीड़े का जन्म कोई, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही मोराश। इसका मतलब है हम अभी तक मानते हैं, हम लोग हम कृष्ण को मानते हैं, पर अभी तक वो भक्ति भाव का शायद अनुभव नहीं हुआ है। हां काफी हद तक हुआ है, नहीं तो टिकते नहीं यहां तक अभी तक। पर जिस स्थिति में हम अब हैं, थोड़ा मुक्त है, चलो कम से कम अच्छा लगता है इधर, और वो तंग नहीं है, बाहर के संसार से तंग नहीं है। अगर वो ही एक प्रेरणादायक है तो ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि हृदय जब तक संतुष्टि और आनंदित नहीं है, तो ये संतुष्टि और आनंद के लिए कहीं और हम ढूंढेंगे ही और जाएंगे ही। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी इस संसार में किसी भौतिक दुखों से मुक्त होने के लिए नहीं आए, ये एक ही उद्देश्य से आए, भगवान के सेवा का आनंद लेने के लिए। इसका सबूत क्या है, महाप्रकाश लीला में देखो, महाप्रभु पूछ रहे हैं क्या चाहिए, तुम्हें सिद्धि चाहिए, नवदा नव क्या बोलते हैं, धन चाहिए, नवनिधि अष्ट सिद्धि कुछ चाहिए, बोले नहीं। तो ये जो आनंद है, सर्वश्रेष्ठ आनंद जो हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देता है कि और कुछ नहीं मांगता व्यक्ति, वो कहां आता है, मैं भगवान का सेवक हूं, और न केवल सेवक हूं, सेवकों का सेवक हूं। ये भाव, ये समझ नहीं, समझ बुद्धि का है, ये भाव अगर हृदय में आ जाए और अनुभव कर रहा है कोई, तो फिर उसे इस उससे श्रेष्ठ और कोई चीज नहीं मांगता, भगवत धाम भी नहीं मांगता। कोलावेच श्रीधर से मांगा गया, तुम्हें भगवत धाम जाने की इच्छा है, बोले नहीं, आप ऐसे आते रहो, आप मुझे ऐसे सताते रहो, आप ऐसे दर्शन देते रहो, मैं आपकी ऐसे तरह से सेवा करते रहो। केवल ये सोचना कि मैं भक्त बन रहा हूं, ये इतना आनंद देता है, तो सच्ची भक्ति अगर मिल जाए तो कैसा आनंद। अगर थोड़े ठंडे दिमाग से सोचे, देवामृत महाराज कहते हैं, एक प्रामाणिक भक्त की चिंता क्या होती है, भविष्य की चिंता। वो कहते हैं कि इतना चिंता, एक अच्छा घर हो, मेरी आर्थिक परिस्थिति अच्छा हो, या ये मंदिर से वो मंदिर जाऊं तो अच्छा हो, या ये समाज भक्त समाज से कोई दूसरे भक्त समाज में जाऊं, या कृष्ण सेवा, एक पर्टिकुलर सेवा के प्रति, ना ही आध्यात्मिक या भौतिक सुरक्षितता के प्रति भी उतनी चिंता नहीं है, तो सबसे बड़ी चिंता क्या है, सबसे बड़ी चिंता एक भक्त की, देवामृत महाराज कहते हैं कि मेरा भविष्य कृष्ण भावना में क्या होगा, क्या मेरा हृदय संतुष्ट और आनंदित रहेगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मेरी परिस्थिति क्या होगी, मेरे हृदय की परिस्थिति क्या होगी, क्या मैं संतुष्ट रहूंगा, क्या मैं आनंदित रहूंगा, प्रगति करते रहूंगा भक्ति में। यह सबसे बड़ी एक प्रामाणिक भक्त की चिंता रहती है, भले दिखता नजर नहीं आता है वो, पर प्रामाणिक से वही एक चिंता बड़ी रहती है। और जब तक हम जानेंगे नहीं कि इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, तब तक हमेशा एक तरफ हम भक्ति कर रहे हैं, दूसरी जगह माया खटखटाती है, सोच ले बेटा सोच ले, अभी भी टाइम है, मतलब तू सब कर रहा है पर अभी भी थोड़ा सोच ले, हमेशा खटखटाते रहती है बगल में। और जब तक ये सच्चा संतुष्टि और आनंदी कृष्णदास का समझ नहीं, कृष्णदास का अनुभव नहीं कर रहे हैं, इस दासत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, तब तक ये माया की खटखटाहट जो है हमें एक समय एक जगह से सुनाई देते रहेगी। और देवामृत महाराज बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं माया कैसे बोलती है, ऊपर डायलॉग है उन्होंने बड़ा सुंदर दिया है। आप बोलेंगे एग्जैक्टली तो ठीक नहीं है, एक दो उसमें से आपको लागू होगा शायद, मैं जब पढ़ा तो मेरे को लग रहा था कि अरे मेरे हृदय की बात कैसे बोल दिए। धीरे से माया आके कहती है, और जब तक ये अनुभव नहीं कहेंगे कभी भी हम उसकी सुनकर वापस हम वापस जा सकते हैं। तो माया कहती है तुम इतने समय से भक्ति कर रहे हो, कितने सालों से इंद्रियों को संयम कर रहे हो, मूर्ख सत्य क्या है जानो, हाँ? अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, तू साधु नहीं है, मैं तेरी पुरानी मित्र हूं माया, तेरे शुभ चिंतक हूं, सचमुच में मैं तेरा भलाई चाहती हूं। जो असली दुनिया में बाहर में रह रहे हैं ना, ऐसे भक्तों से जाके बातचीत कर, ये बहुत ज्यादा भक्त 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 करने मत, देख शुरुआत में हर एक नव सुखिया भक्त ऐसी परिस्थिति से गुजरता है, एक फैनेटिकल कृष्ण 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 कृष्ण। अब थोड़ा बैलेंस हो जा, अब थोड़ा रियलिस्टिक बनो, फ्लेक्सिबल बनो, प्रैक्टिकल बनो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत हो गया, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा बैलेंस करो। जहां तक ब्रजलीला में प्रवेश करना है, बाद में है ना, पूरा दुनिया पड़ा, पूरा जीवन पड़ा हुआ है, बाद में वो कर लेना, अभी के बारे में क्या, क्या तुम अभी संतुष्ट है, बहुत आनंदित है, नहीं है ना, हाँ। अपने भावनाओं को दबाओ मत, अभी तो तेरा दीक्षा भी हो गया, तू तो नियम का पालन कर रहा है, हाँ, पर फिर भी तेरा हृदय अभी तक संतुष्ट नहीं है। अरे कृष्ण भगवत गीता में ये नहीं बोले हैं, मैं बोल रही हूं, क्योंकि मैं तेरी सच्चा मित्र हूं, मैं बड़ा प्रामाणिक हूं और बड़ा प्रैक्टिकल औरत हूं, मैं औरत नहीं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम माया कृष्ण को भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं करना, कृष्ण को हमेशा याद रखना, कृष्ण को मानना, पर तुम्हारे इंद्रियों का तो उपयोग होना चाहिए ना, हृदय का भावना से भरना चाहिए, इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसा उपयोग करना चाहिए। हां मैं परम सत्य नहीं हूं, पर मैं तेरे लिए असली दुनिया हूं। भगवान भी तो कहते हैं ना, भगवान गीता में कहते हैं ना, निग्रह किम करिष्यति, इंद्रियों को निग्रह कर करके क्या फायदा। जहां तक तुम्हारी भावना है व्यक्त करो, अगर काम वासना आता है तो काम ही बनो, ईर्ष्या आता है तो थोड़ा दिखाओ एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, क्रोध आता है तो दिखाओ, सरलता से करो और प्रेम से करो, अच्छे तरह से करो, मैं तुम्हें वो छूट दे सकती हूं। कृष्ण नहीं देते, सब छूट नहीं देते, बोले ये मत करो वो मत करो वो मत करो, मैं सब छूट देती हूं, इज़न्ट इट, बहुत अच्छा है ना, आनंदित है जीवन, बहुत मजा आ जाएगा। हां तुम कह सकते हो अरे वो स्वामी को तो देखो, वो स्वामी देखो कितना कड़क है एकदम, कितने सालों से कर रहे वो, देखो मैं सच बताती हूं, इसे भ्रमित मत हो जाना, सबके सब ढोंगी लोग हैं, सब दिखावट कर रहे हैं, सारे वैष्णव ऐसे ही होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव
बड़े महान वैष्णव,
ये वैज्ञानिक तत्व है। कोई भी जिंदगी भर संतुष्ट नहीं हो सकता कृष्ण भावना में।
थोड़ा रिलैक्स रहो और अपने भावनाओं को खुला छोड़ो, और इस तरह से मैं तुम्हारी काउंसलर हूं, मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूं।
और जैसे जैसे तुम बूढ़े हो जाओगे, उस समय भक्ति करना, तैयारी करके ऊपर जाना। अभी थोड़ा आनंद भी ले लो इस संसार का। हृदय खाली खाली पड़ा है कि नहीं?
इतना इंद्रियां, नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं वो नहीं,
पर संतुष्ट नहीं हो तुम। ये चीजें कहीं तो हमारे दिमाग के पीछे खटखट हो रहा है, सचमुच में क्या मैंने ठीक निर्णय लिया है? हाँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? 20 साल के बाद पता चला, अरे क्या यार, हरे कृष्णा में घुस के गड़बड़ी किया।
तो
मेरा हृदय संतुष्टि चाहता है, प्रेम चाहता है, आनंद चाहता है,
और
बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट को क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा कुछ मतलब हर रोज कुछ नया 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 ऐसा कुछ मिलते रहना चाहिए, हृदय को अच्छा लगता है वो।
तो क्या मैं भक्ति में ऐसा अनुभव कर सकता हूं? क्या अनुभव कर रहा हूं? 5 साल के बाद मेरी हृदय की परिस्थिति क्या होगी? कितना आनंद रहेगा?
और इसीलिए देवामृत महाराज कहते हैं, क्योंकि ये खटखटाहट पीछे से उसकी चलती रहती है, जब तक निष्ठा या रुचि या भाव के स्तर पर नहीं आते, तब तक ये खटखटाहट चलती रहेगी। और ये कृष्णदास बनने की जो आनंद है, इसका अनुभव करना बड़ा मुश्किल है।
तो पंच तत्व जो हैं, वो इसे आस्वादन करने और इसे बांटने आए,
और इस भक्ति भाव का उन्होंने बाढ़ फैला दिया, और जो भी उसमें डूबा इस बाढ़ में, जब बाढ़ आ जाता है तो सारे बीज सड़ के नष्ट हो जाते हैं, उगता नहीं है। इसी तरह से ये कृष्ण भाव का या कृष्ण प्रेम का जो बाढ़ पंच तत्व ने मिला, इस बाढ़ में जो डूब गया, उसके सारे ये बीज जो हैं, अनर्थों के बीज, ये पूरे नष्ट हो जाते, सड़ जाते हैं, और कभी अंकुरित नहीं होते या परिफल होकर हमें सताते नहीं।
सही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारे रा मुद्रा उघाड़िया, पांच मिली लुटे प्रेम करे आस्वादन, जत जत पिए तृष्णा बाढ़े अनुक्षण।
से ही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, ये पंच तत्व पृथ्वी पे आए, पूर्व प्रेम भंडारे रा मुद्रा उघाड़िया। जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो रासलीला इत्यादि दर्शन किए थे, पर वो लॉक एंड की ताला लगा हुआ था, पर इस भंडार को उन्होंने खोल दिया। जैसा बांध को तोड़ देते हैं तो बाढ़ आ जाता है, इस तरह से उन्होंने ताला खोल कर इसे, पांचे मिली लूटे प्रेम, ताला खोलकर खूब उन्होंने लूटा इस प्रेम को, करे आस्वादन, खूब आस्वादन किया। पर इसका खासियत क्या है? जत जत पिए तृष्णा बाढ़े अनुक्षण, जितना पियोगे उतना प्यास बढ़ता है, ये अजीब है, और प्यास बढ़ता है, और प्यास और ज्यादा पीने का।
तो अद्वैताचार्य यही चीज दिखा रहे हैं,
और पागल जैसे नाचते हैं लोग, पागल जैसे नाचना, ये पंच तत्व मिलके कीर्तन करते थे, ये पागल जैसे नाचना। हम लोग दक्षिण भारत गए थे और श्रीरंगम मंदिर में ऐसे पागल जैसे नाच रहे थे हम लोग।
तो एक श्री वैष्णव वहां खड़े थे, उन्होंने आके बोला कि हमारे एक महान आलवार हुए नम्मा आलवार, उन्होंने तमिल में
5000 साल पहले तमिल में लिखा है कि भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं तो उनका ये जो पैर है इतना उछलते हैं, पैर पीछे पेट के नीचे वाले को लगता है, मतलब फट फट करके ऐसा लगता है। मैं सुना था, आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से आप लोग सब नाच रहे, पागल जैसे नाच रहे, और हमारे आईवाइस पर के बच्चे तो वो लोग तो ऐसा कूद रहे थे, वो उनको इतना खुला खुला जगह मिल गया, छोटे छोटे रास्ते से घुस घुस के सडनली खुला मिल गया, बच्चों को ऐसा ऐसा मंदिर खाली हो जाए ना तो हे भागते इधर से उधर से, कहीं मिलता नहीं ना ऐसा घर में जगह, तो कहीं बड़ा हॉल में आ गया ना, ओह उनके लिए तो खुला दिन बस। तो हमारे भक्त लोग भी 5000 लोग घिस घिस के सबसे हटे झकने, और ये कहा कि इतना बड़ा मंदिर, सब जो नाचने लगे वो देख रहे थे, उनको श्लोक याद आ गया, बोले एकदम बोनाफाइड वो महाप्रभु देने आए, इससे पहले अनर्पित चरिंचिरात। पर जो अनुभव कर रहा है उसको भी नहीं मालूम क्या अनुभव कर रहा है, सिर्फ लक्षण दिख रहा है उसका, पर जब तक समझेंगे नहीं तब तक नहीं। तो इस तरह से हाँ, तो कहते हैं ये भक्ति भाव है एक भगवान के सेवक बनने का। इस भौतिक और आध्यात्मिक संसार में जितने सारे महानुभाव हुए इसी भक्ति भाव के पीछे लालायित हैं, ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, वैकुंठ में हो या गोलोक वृंदावन में हो, हर एक व्यक्ति इस चीज के पीछे। हम चैतन्य भागवत में पढ़ते हैं, चैतन्य मंगल में पढ़ते हैं, नारद मुनि किसके पीछे कैसा पागल है, शिव जी जब इसका आस्वादन किए तो किस तरह से पागल जैसे नाचने लगे, उनका डमरू एक साइड चला गया, उनका मृग छाल एक साइड चला गया, नारद मुनि बजाए तो उनका वीणा एक जगह चला गया, उनका क्या बोलते हैं उपवीत वो एक जगह चला गया, ऐसे पागल जैसे नाच रहे थे। तो अब दूसरा सवाल उठता है कि ये तो सुनने के लिए बहुत अच्छा है महाराज, शुरू कहां से करें, अनुभव कैसे किया जाए इस भक्ति भाव को, कुछ प्रैक्टिकल किस तरह से हम इसका अनुभव करें। ये तो बहुत ऊंची बात है, पीएचडी लेवल की बातें कर रहे हैं, हम तो केजी पे हैं, तो कहां से शुरू करें हम। भक्ति का मतलब क्रियाशील होना, एक्टिव, एक्टिविटी, कार्यरत होना। भक्ति एक सिर्फ भावना नहीं है, दैट्स व्हाई इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। तो भक्ति मतलब कार्यरत होना, अपने हृदय को और अपने इंद्रियों को कृष्ण की आनंद के लिए सेवा में लगाना, इसकी शुरुआत होती है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ऋषिकेण इंद्रियों से, छह इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां और छठा जो है वो मन, मन व्यस्त रहे और इंद्रियां चलित रहे, कार्यरत रहे। तो अगर भक्ति भाव प्राप्त करना है तो भक्तिमय सेवा करनी बहुत जरूरी है। एक संतुष्ट या सुखी भक्त वो है जो हमेशा सेवा ढूंढता है, सेवा के पीछे मतलब आतुरता है, मांगता है, सेवा चाहिए। कहां है वो सेवा का एक मौका, केवल मानना नहीं, कहा मैं मानता हूं, मैं जानता हूं ये सबसे श्रेष्ठ है और कृष्ण मैं दास हूं, नहीं, एक्चुअली सेवा में लगना। एटलीस्ट मेरे जिस समय से मैं कृष्ण भावना में हूं, मेरा अनुभव है जब भी हम सबसे ज्यादा व्यस्त रहे सेवा में, इतना कि खाना पीना भी भूल जाते, पूरा मन ये सेवा होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, व्यस्त रहता है और बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, उस समय हमको लगता है क्या बहुत हो गया। पर वो पूरा सेवा होने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं, बोलते हैं वो दिन सबसे अच्छे थे, अरे वो 15 दिन जो जन्माष्टमी का कैसे गया पता नहीं, पर अच्छा लगा, पर पूरा शरीर से परे चले गए थे हम लोग, 3 गुणों से परे चले गए थे, कोई दूसरा चिंता ही नहीं था क्योंकि पूरा पैक था। पर फिर जब चुपचाप बैठ रहते हैं ना तो फिर 1000 दूसरे विचार आते, तब लगता है जब करते रहते हैं उस समय नहीं लगता, पर पीछे मुड़ के देखते हैं बोले सबसे आनंदमय दिन उस समय था जब हम लोग पूर्ण रूप से व्यस्त थे। जो हमेशा यही चिंतन करते रहते हैं कि कैसे मेरे हृदय यानी मन और मेरी इंद्रियां हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए लगे रहे, वो व्यक्ति सबसे संतुष्ट व्यक्ति है, सबसे आनंदमय व्यक्ति है। और सबसे ज्यादा मतलब बुरी परिस्थिति में वो ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ सेवा नहीं है, और उसमें अगर वो संतुष्ट है वो माया में। क्यों? क्योंकि उसका हृदय कहीं और है, क्योंकि हृदय चाहिए, इंद्रियों को और मन को बिजी रखना चाहिए, यहां नहीं तो वहां, तटस्थ है जीव, या इधर अंतरंग या बहिरंग। अगर मन व्यस्त नहीं है, अगर शरीर क्रियाशील नहीं है इसमें, तो उसमें रहेगा ही मन कहीं। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप बोलते, अगर मन कुछ नहीं सोच रहा है तो हजारों चीजें, हजारों शक्तियां हैं जो हमें खींच रही हैं उधर से। आकर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण आकर्षक हैं, अगर कृष्ण से आकर्षित नहीं हुए तो बहुत सारी चीजें हमें आकर्षण कर रही हैं, खींच रही है हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को व्यस्त करने के लिए। तो इसीलिए जो व्यक्ति व्यस्त है, मन कैसे व्यस्त होता है, जब जवाबदारी होती है, अच्छा नहीं लगता, जवाबदारी मतलब बोझा, अच्छा लगता नहीं है, बोझा लगता है, पर ये प्रेम का बोझा है। 2 प्रकार के बोझे हैं, एक बोझा गधा जैसा बोझा, गधा भी बोझा होता, ढोता है, बर्डन ऑफ द बीस्ट, और दूसरा है बर्डन ऑफ लव, प्रेम का बोझा। अब प्रभुपाद जी को दीजिए, देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था को चलाना, मरने के एक दिन पहले भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, एकदम माइक्रोफोन मुंह के पास ऐसा रखा गया, और फिर भी उनकी चेतना देखो परफेक्ट। क्यों? क्योंकि उनको आज्ञा थी, उनको गुरु की, जैसे ये अंग्रेजी भाषा में इन पुस्तकों को लिखो और बांटो, तो उस समय दूसरा कार्य तो नहीं कर सकते थे, 6 महीने से लेटे हुए थे, कुछ खाने रहे थे, कुछ पीने रहे थे, थोड़ा सा जूस लेते थे, वो भी क्या एक आधा ग्लास में, पौना ग्लास, सवा ग्लास, क्या बोलते हैं, 1/4, और वो भी लिए नहीं लिए, तो उस समय और कुछ नहीं, तो एक चीज कर सकते थे जो वो ही कर सकते थे, भक्ति वेदांत तात्पर्य दे रहे थे, और समय ये है, ऐसा चलना है, ऐसा चलना है। एक परिवार चलाने के लिए कितनी सरदर्द, कितनी जिम्मेदारी, एक छोटा परिवार चलाने के लिए 4-5 लोगों का, और जन्मे जन्मे प्रभु से ही उन्होंने इतने सारे लोगों का जिम्मेदारी लिया है, कितनी चिंता, कितना बड़ा बोझा ढोआ अपने कंधे पे, और 24 घंटे व्यस्त, सोते थे वही 2-3 घंटा इधर उधर सोया, बीच में उठा, और दिन भर मैनेजमेंट और रात भर ट्रांसलेशन, सारे लोग सोते रहते थे उस समय इनका ट्रांसलेशन चलता था, उनको कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई जबरदस्ती, कौन जबरदस्ती कर सकता था उनको, संस्थापक आचार्य जो करेंगे वही है बस, बोलेंगे चलो 8 घंटा में सो रहा हूं, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, कौन डिस्टर्ब करेगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और अंतिम सांस तक, रिटायरमेंट का क्वेश्चन ही नहीं, भौतिक कार्यों से हम रिटायरमेंट लेते हैं, पर आध्यात्मिक कार्यों में रिटायरमेंट नहीं, ये प्रेम का बोझा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तीन उदाहरण देते हैं प्रेम का बोझा। बोले एक मां के लिए बच्चे का बोझा प्रेम का बोझा है। बच्चा अगर हट्टा कट्टा हो, 10 पाउंड का हो बच्चा, तो घर की जो नौकरानी है उसके लिए बोलता है इतना मोटा आ रहा है, इसको कौन उठा के ले जाएगा 2 घंटा। पर मां के लिए भी उतना ही बोझा है, पर वो बोझा नहीं है, प्रेम का बोझा है, प्रेम से उठाएगी वो। एक बिजनेसमैन के लिए पैसे का बोझा, अगर बहुत पैसा मिल गया वो बोझा थोड़ी है उसके लिए। नौकर को बोलेगा इसको उठा के वहां जा जा, उसके लिए बोझा है, क्यों उसमें खर्चा नहीं कर सकता उसमें एक पैसा भी हो, पर जो मालिक है उसके लिए बोझा थोड़ी है वो, प्रेम का बोझा, प्रेम से उठाएगा वो, आ क्या प्रॉफिट मिला आज। और एक नवविवाहित स्त्री के लिए पति का बोझा, वो बोझा नहीं है वो प्रेम का बोझा। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक गधे का बोझा और दूसरा प्रेम का बोझा। जब प्रेम नहीं है, जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसके लिए सब चीज बोझा बन जाता है। प्रभुपाद कहे के श्री विग्रह कर दिया और अगर प्रेम नहीं है तो बोलता अरे बाप रे इतना बड़ा श्री विग्रह गलत ग्रह बन जाएगा। गलत ग्रह मतलब गले पे लगाया हुआ इतना बड़ा पत्थर, अरे बाप रे ये इतना बोझा क्यों देके चले गए, अभी कौन सेवा करेगा। जब प्रेम नहीं है तो बोझा बन जाता है, पर जहां प्रेम है वो प्रेम का बोझा अच्छा लगता है, उसके बिना लगता है सुना सुना, नहीं कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ कुछ कर नहीं रहे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत बहुत अच्छी बात कहते हैं देवानंद स्वामी महाराज, इसकी शुरुआत क्या करना है, इट बिगिंस बाय कॉन्शियसली सीकिंग टू डू समथिंग फॉर कृष्णा विद कॉन्सेंट्रेशन। मैं कुछ तो कृष्ण के लिए करना चाहता हूं और पूरा ताकत उसमें डालना चाहता हूं, कोई भी छोटा चीज हो ठीक है, मैं अब जप करना चाहता हूं, मैं अब कृष्ण के लिए जप करना चाहता हूं, पर बड़े अच्छे तरह से करूंगा, जो भी करूंगा पूरा ताकत मतलब हृदय डाल के अच्छे तरह से करूंगा। एक चीज बताया गया सबको, बताया गया 16 माला करो, ये 16 माला जितना हो सके उतना अच्छा, जितना हो सके उतना ध्यान से, जितना हो सके उतना प्रेम से करूंगा, भावना मतलब प्रेम से करूंगा, मतलब आप जैसा भगवान को एक फूल चढ़ाते हैं तो एकदम सड़ा हुआ फील पुराना फूल ऐसा नहीं चढ़ाते हम, सबसे बेस्ट जो हमारे पास है वो हम चढ़ाते हैं उनको, ये प्रेम का लक्षण है। जो भी करेंगे बहुत अच्छे तरह से, छोटे से छोटा कार्य, हमारा मुंबई में खार का कार्यक्रम होता था, खार में 25-30 साल से चल रहा है कार्यक्रम, एक भक्त को बोला गया था कि आपका सेवा है भगवान को, शुक्रवार के शाम को 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, 7:15 बजे तक वो हार तैयार होके वहां लगना चाहिए, ये उनको बोला गया था। और रहते हो कहीं सांता क्रूज में, काफी दूर है, बस ट्रेन चढ़ के आना या बस लेके आना, ट्रेन पैक रहता है शाम शॉप को तो पैक रहता है, कुछ भी हो जाए आंधी हो या तूफान कुछ भी हो, एक चीज मैं भी कभी कभी नहीं जाता था प्रवचन के लिए कार में, पर वो हार वहां 7:15 तक पहुंच जाता था, किसी ना किसी तरह से वहां पहुंचना चाहिए। उस छोटी सी चीज को उन्होंने इतनी गंभीरता से लिया कि ये मेरा सेवा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा है, भले छोटा सा चीज है बस, बाई चांस नहीं भी आया तो चलता है, ठीक है आज बारिश था नहीं आया कोई, चलता है, पर उनके लिए वो जन्म मृत्यु का प्रश्न काफी गंभीरता से उलिए थे। एक दिन वो बाहर चले गए थे कहीं, तो जयपुर गए थे वहां रहते वो, वहां से उन्होंने फोन किया अपने नेबर को, पड़ोसी को, पड़ोसी को बोला एक काम करो, उसको मालूम ही नहीं नया आदमी है वो, उसको कुछ नहीं मांगा, बोले एक ये हार, ये साइज का एक हार खरीदना, और खरीदने के बाद ट्रेन पकड़ के यहां जाना, उसका सारा पैसा मैं देता हूं, जाके 7:15 बजे तक पहुंचा देना चाहिए उधर। और वो आया ढूंढते हुए, कैसे तो पहुंचा हो, बोले जल्दी निकलना क्योंकि तेरे को ढूंढने में टाइम लगेगा। अभी कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, पर उनका एक नियम था, नहीं ये लिया हूं तो इसको पूरा अच्छे तरह से जितना अच्छा हो सके मेरी ओर से, और ये इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या है इस संस्था में, क्योंकि यहां कोई पगार नहीं है, क्योंकि यहां कोई ये वॉलेंटरी है, वॉलेंटरी में क्या बोलते हैं, हाँ स्वेच्छा से तो एक तो डर दिखा सकते हैं, तो डर किसको दिखाएगा, पगार नहीं दूंगा तेरे को नहीं करेगा तो ठीक है, वैसे भी नहीं लेता हूं तो छोड़ो, तो डर नहीं दिखा सकते। दूसरा गाजर लटकाना, देख तो बहुत हो, ये होगा वो होगा, बोले नहीं चाहिए चलेगा। कम से कम कर्तव्य के रूप में, कम से कम, वो तो प्रेम तो ऊंची बात है, प्रेम शायद नहीं है, कम से कम कर्तव्य के रूप में वहां अगर शुरू हुआ, जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए डंडा दिखा के ही काम होता है, इसीलिए शास्त्र में लिखा गया जो ये पालन नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। ओह, नरक के डर से कम तो सबसे निम्न श्रेणी का प्रेरणादायक तरीका है डराना। और कुछ धर्म जो हैं डरा डरा के उन लोगों को कर लेते हैं, कुछ धर्म जो हैं पाश्चात्य देश के धर्म, वहां हम देखते हैं एक ही चीज है डर, तू नरक में जाएगा, मरेगा तू, हमेशा हमेशा के लिए नरक में सड़ेगा तू, या गाजर लटकाना स्वर्ग में जाएगा तू, वहां हजारों स्त्रियां तुझे मिलेगी भोग करने के लिए, बाद में अभी तू कर चुपचाप जो बोला गया। रजोगुण में इस तरह से विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्राम, जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर मासे फलम लभेत, इस तरह से लोगों को प्रेरित करना। उससे भी ऊंचा जो सत्वगुण में है उनके लिए कर्तव्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु अकर्मणी, क्योंकि उसको डरा नहीं सकते, बुद्धिमान व्यक्ति है सत्वगुण में है, क्योंकि वो शुद्ध जीवन ऑलरेडी जी रहा है, तू तो नरक में जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ये सब नहीं खा रहा हूं, मैं शुद्ध जीवन जी रहा हूं। गाजर नहीं लटका लगते, क्यों, क्योंकि वो संतुष्ट है, जितना पैसा है उसमें मैं संतुष्ट हूं, स्वर्ग स्वर्ग नहीं चाहिए, यही मैं अनुभव ठीक हूं। ऐसे व्यक्ति को कर्तव्य, अरे तेरे लिए इतना किया भगवान ने, तू इतना नहीं कर सकता, शर्म आनी चाहिए तुझे, हाँ ये करना चाहिए। और इससे भी दिव्य स्तर है आश्ली सेवा पादरतम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करोतुवा मत प्राणनाथ तुसे बना पारा, ये बहुत ऊंची बात है। तो कम से कम कर्तव्य के रूप में अगर कुछ सेवा जो भी है उसको जितना हो सके अपना पूरा हृदय डाल के, भले छोटा सा चीज क्यों ना हो, कोई भी। और आप कहेंगे प्रभु जी हमको तो कोई किसी सेवा दिया ही नहीं अभी तक, एक अच्छा सेवक ढूंढ के निकाल लेता है सेवा, और सचमुच में वो सेवा करना चाहता है तो उसे मालूम है कहां सबसे जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। हम लोग एक बार इसमें गए थे कुंभ मेला में, कुंभ मेला में हम लोग ऐसे ही पहली बार गए थे, घूमने गए थे हम लोग, घूमने मतलब अच्छा था, कुंभ मेला भी देखने जाएंगे, ब्रह्मचारी लोग गए थे 20 ब्रह्मचारी लोग, तो इधर उधर सब तंबू घूम के आए, बाद में महाराज ने हमको झाड़ा, बोले घूमने के लिए नहीं आया समझा, 24 घंटा पूरा यहां जब भी हो जैसा तुम्हारा जपा हो जाता है हरिनाम करो पुस्तक बांटो या स्टॉल, बहुत सारे स्टॉल लगे होते, स्टॉल में खड़े होकर जो बड़े बड़े ऐसा मतलब डायरामा था, डायरामा को एक्सप्लेन करो, तुम लोग यहां घूमने नहीं आए, देखने नहीं आए कुंभ मेला, कुंभ मेला में प्रचार करने आए, उल्टा सीधा प्रचार हो जाएगा, तुम लोग उन सब देखने की जरूरत है, तुमको सिद्धांत जो है सीखा। तो डांटना पड़ा हमको, और हम लोग उसमें कम से कम 3-4 साल के भक्त थे, 2 दिन हम लोग घूम रहे थे, 3रे दिन महाराज जी आए, डांटे हमको, बोले 3 दिन से यही कर रहे हो, किसी घर प्रसाद खाने जा रहे हो, यहां बैठ के काम करो। ओ झाड़ने के बाद फिर हम लोग सब लोग लग गए हरे कृष्णा हरि नाम कर रहे थे। पर और उस समय बड़ा तंबू था, उस तंबू में काफी लोग ऐसे साधु लोग आते रहते थे, उन लोगों को प्रसाद खिलाना, प्रसाद खिलाते रहना, प्रसाद खिला। और एक बार शुरू किया प्रसाद तो 5-5, 6-6 घंटा चलता था, तो लोग थक जाते थे, थोड़ा देर सर्विंग करके चले जाते थे। तो एक व्यक्ति मैंने देखा, कम से कम 6.5 फुट का होगा, जर्मनी का था, वो भक्त आया ऐसे 10 बजे, हम लोग सब प्रसाद शुरू कर रहे थे, 11 बजे प्रसाद शुरू कर रहे थे दोपहर को, सुबह 11 बजे शुरू करते थे हम लोग, 11 से 4-5 तक चलता था। तो हम लोग 8-10 लोग थे, उसके लिए कोई राजी, बहुत कम लोग आते थे प्रसाद, मालूम है सेवा के लिए बहुत मुश्किल होता है, पकड़ पकड़ के लाना किसी को, और तो इधर उड़ के देखा तो उधर से गायब हो जाता, उस सब में हम लोग बहुत होशियार, मालूम है प्रभु जी उधर गए तो इधर से गायब बस। तो कई तरह से 8 लोगों को पकड़ के रखा था, बोले तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा, प्लेट बना के रखा है, पर जब तक पूरा खत्म नहीं करो, तो बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। तो ये आदमी आया 6.5 फुट का हट्टा कट्टा व्यक्ति, और एक ऐसा है बैग लेके आया, और सीधा आया तंबू के अंदर आके प्रणाम करके बैग साइड में रखा, और देखा कि हम लोग सब सेवा कर रहे हैं, उसने भी एक बकेट ले लिया, शुरू कर दिया, सेवा कर रहा था, धीरे 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 एक 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 गायब हो गए। एक बैच सब उठ के गए तो उनके साथ भक्त भी चले गए, दूसरा बैच जब आया तो कोई भी, तो ये अकेला, पहले राइस, थोड़ा देर हो रहा था, राइस बांटा, फिर दाल बांटा, डायरेक्टली अभी आया है वो, और वो सीधा लग गया, उसको मालूम ही नहीं कहां से भर के लाते हैं, क्योंकि सीधा पंडाल में आया हो। तो खत्म होने के बाद वो जर्मन के अलावा उसको दूसरा भाषा आता नहीं, तो किसी को पूछ रहा है किधर किधर है, तो बोला इधर ही बैठ के, उसको लगा लोग खाने के लिए बोल रहे, बोले इधर ही बैठ के खाओ, बोला नहीं 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 भरने के लिए किधर, तो बाद में किसी ने दिखाया उधर, तो किचन में आया, अंदर थोड़ा किचन था, किचन में आया तो किचन में इतना राइस बना रहे थे, हजारों हजार लोग आते थे, तो ऐसा बड़ा डेक्ची बना के, चटाई था बड़ा बड़ा चटाई, चटाई के ऊपर राइस डाल देते थे, और उसमें से बकेट में ले जाके डालना हमको, तो भरता था, भर के ला के, वो सर लाने वाले और थे और सर्विंग करने वाले और थे, कोई नहीं था तो भर के लाता और इधर भी करता, भर लाना और इधर से सर्विंग करना। उसके बाद जो कुकिंग कर रहा था वो चला गया, वो कोई था नहीं, वो भी कर रहा था, वो कुकिंग भी कर रहा, थोड़ा बैलग लगा के आता था भर के ला के, 3 दिन के अंदर पूरे किचन का इंचार्ज बन गया, क्योंकि दूसरे लोग थे ही नहीं, एक शब्द उसको बोलना नहीं आता है जर्मन के अलावा, और दूसरों को जर्मन तो आता ही नहीं, पर अभी भी मुझे याद है वो कौन है अभी मेरे को नहीं मालूम, वो आया, किसी को बोलना नहीं पड़ा, उसकी इच्छा थी कुछ करने की, सफर में था वो, आया प्रेम से 3 दिन सेवा किया, 4थे दिन जब समाप्त हुआ हम लोग भी गए, वो लोग भी गए, तो मैं सोचा कोई इसके पीछे नहीं था, हमारे पीछे डंडा लेके कोई बैठना पड़ा, और वो भी हम लोग थोड़ा समय देके भागते थे, पर ये कहां से इसको प्रेरणा आई कि आया, अपना ढूंढ के उसने समझ लिया कि ये जगह सबसे जरूरी है, कोई कुछ सेवा होती है जो कोई नहीं करना चाहता कभी कभी। प्रभुपाद जी के शिष्य जयानंद प्रभु ऐसे थे, उनका बड़े वेरी रेयर, बहुत कम लोग, बिरला कोई ऐसे इतने व्यक्ति मिलते हैं कि अध्यक्ष से लेकर कचरा को फेंकना जाके, वो कचरे पेटी में अलग अलग थैली बना के वहां डालना पड़ता है अमेरिका में, और इतने खुशी से करते थे कि लोग बोलते थे कचरा फेंकने वाला इतना खुशी दिखता है ना, ये संस्था में कुछ तो आनंद होना चाहिए, क्योंकि इतना प्रेम से कर रहा है ये सेवा, सचमुच में इसको आनंद होना चाहिए, इसमें कुछ तो आनंद होने, क्या करता है पता नहीं, वो रथ यात्रा बनाई, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि रथ यात्रा में उनका चित्र रखा करो, उनका फोटो भी रखा करो। और गाड़ी चलाते थे दिन भर, टैक्सी, उस समय नया नया शुरू हुआ था ये संस्था, और पूरा भाड़ा ला के प्रभुपाद जी को दे देते थे, और मंदिर चलाते थे, और जिस दिन उन्होंने देखा एक योग्य व्यक्ति अध्यक्ष बन गया उस दिन उन्होंने उसको सौंप दिया और बाकी जैसे चलाते रहे। और जब प्रभुपाद आए एक साल के बाद, सब भक्त लोग आके एकत्रित थे, सब प्रभुपाद जी का दर्शन करने आए, प्रभुपाद सबको देखे और बोले जयानंद किधर है, बाद में बोले वो बिजी है कहीं, तो कुकिंग कहीं तो बिजी थे, बोले उसको बुलाओ। सब प्रभुपाद जी को देखने आए और प्रभुपाद जी उनको देखना चाहते। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे ना, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहे। ऑफकोर्स ये कहना बड़ा आसान है, पर यहां हम देखते हैं कि अगर इच्छा हो तो भगवान साधन जोड़ देंगे, और कमी नहीं है। जब तक एक अभक्त है इस संसार में, प्रचार की कमी नहीं है, आई मीन सेवा की कमी नहीं। कोई बोल सकता है सेवा नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं है, दो पुस्तक ले जाओ सड़क पे खड़े होके बांटो, कौन रोक सकता है तुम्हें, दो पुस्तक लेके खड़े हो जाओ सड़क पे और बोलो हरे कृष्णा ये पुस्तक है भगवान के बारे में पढ़ो। वैशेषिक प्रभु 35-40 साल से गृहस्थ हैं, अपना खुद का कमा रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं है जो 3 घंटे का उन्होंने पुस्तक वितरण नहीं किया हो, कोई प्रेरणादायक अभी भी नहीं, बस प्रभुपाद जी को अपना अकाउंट देते हो। बिरला ऐसे लोग मिलेंगे, पर कमी नहीं है, पर कहीं तो उनको इतना आनंद मिलता है उसमें कि कोई भी कुछ कहे, कोई भी थोड़ा निराशाजनक व्यक्ति कर दे, निरुत्साह कर दे, पर ये चालू रहते हैं इनका। तो यही यहां कह रहे हैं, भक्ति की शुरुआत होती है कॉन्शियसली, मतलब स्वेच्छा से मैं कुछ तो कृष्ण के लिए करना चाहता हूं, या जो कुछ कर रहा हूं, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला जप करना, या भगवान को धूप दीप दिखाना, जो भी, उसको बड़े जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी के स्तर पे पूरा हृदय डालकर, मन केंद्रित करके, आनंद के साथ, कृतज्ञता के साथ उसको मैं अर्पण करूंगा वो सेवा को। एक बार जब वो व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा चस्का लग जाता है उसके ऊपर, वो बोलता है इतना ही क्यों, और थोड़ा करूंगा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, क्योंकि एक थोड़ा टेस्ट मिल गया, आपको भूख लगी है और थोड़ा कोई कहता है कि चरणामृत है 2 चम्मच है, पीछे पड़ा हुआ है 4 बोतल, अभी 2 चम्मच क्यों तू ले, खाने के बाद बोलता है बहुत अच्छा और है क्या, है ना 4 बोतल ये ले, तो टेस्ट आ गया, अच्छा लगा, तो स्वाभाविक रूप से और करना चाहेंगे। तो कहीं तो एक शुरुआत होनी चाहिए। हमारे एक भक्त हैं, उनके पिताजी बड़े डिसिप्लिन आदमी है, जैन है, वो जैन धर्म के, ये भक्ति में आ गया है लड़का। थोड़े दिन पहले वो कह रहा था कि मेरे पिताजी बड़े डिसिप्लिन आदमी है, सुबह उठते हैं ना तो आप घड़ी सेट कर सकते हो, उठेंगे तो 7 बज गया, ऑफिस जा रहे तो 8:10 ऑफिस से आए तो 5:30, तो ऐसा बड़े टाइम टू टाइम करते हैं, और जो भी करते हैं बहुत प्रेम से करते हैं। पर उनकी एक आदत है, क्या, 8 बजे शाम को अंग्रेजी शराब पीना, एकदम टाइम पे। तो वो आते हैं, वो मतलब 7:30 को उनकी तैयारी शुरू होती है, सीट वीट लगा के बैठते हैं, उसके बाद कपड़ा बिछाते हैं, उसके बाद बॉटल ला के रखते हैं और कांच का फर्स्ट क्लास डिजाइन वाला एक ये है वो रखते हैं, फिर मसाला चना मुरमुरा भड़न जैसा कुछ साइड में, और भजिया वो जैन है कांदा नहीं खाते, दूसरा भजिया फर्स्ट क्लास बना के गरम गरम ला के रखना, फिर सामने टीवी को रख के फेवरेट प्रोग्राम चालू होता है 8 बजे उनका, वो चालू करके आह ये लड़का बोल रहा था, ये भक्त प्रभु बता रहे थे कि प्रभु जी अगर उनको देखेंगे तो लगता है वाह ये व्यक्ति सही में आनंद ले रहा है, मतलब प्रेम से करते हो। उसके बाद थोड़ा सा भड़न लेना या थोड़ा चना मुरमुरा लेना, उसके बाद एक भजिया लेना, और बाद में उसके बाद और फिर धीरे से बोले कोई भी देखेगा बोलेगा मैं भी ये करना चाहता हूं, क्या प्रेम से कर रहा है, कितने आनंद से कर रहा है, ये सही में रस रस लूट रहा है ये। तो भक्त ने देखो, भक्त सारग्राही होता है। एक बार थोड़ा डिटूर ले रहा हूं मैं, रामानुजाचार्य के एक शिष्य के पास पराशर भट्ट, उनके पास एक भक्त आया और बोला एक वैष्णव का लक्षण क्या है, तो भेजे तुम तिरुपति जाओ, तिरुपति में अनंताचार्य उनके पास जाओ और वहां जाए, बड़ी लंबी कहानी है, पर उन्होंने कहा बहुत सारे उत्तर देते हैं, भक्त को बगुला जैसा होना चाहिए, भक्त को मुर्गी जैसा होना चाहिए, भक्त को नमक जैसा होना चाहिए और भक्त को तेरे जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत अपमान किए फिर भी वो टिका रहा। तो बोलते भक्त को मुर्गी जैसा होना चाहिए, मुर्गी में खासियत क्या है, कचरे में भी कुछ तो अच्छा चीज उठा के लेते हो, अब देखो कुछ भी नहीं रहता है, फट 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 चार पायर पायर मांगेगी और टुक 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 क्या मिलता है पता नहीं उसको, तो कचरे में भी हीरा ढूंढ के निकालती हो, कोड़ी पोड़ इरुकुम भक्त को मुर्गी जैसा होना चाहिए, यानी बुरे से बुरे व्यक्ति अगर सामने आ जाए उसमें अगर एक अच्छा गुण है तो उतना ही ले लो और दूसरा छोड़ दो, बुरे से बुरे परिस्थिति से गुजर रहा हो तो उसमें से क्या चीज मैंने सीखा जो मुझे कृष्ण में कृष्ण के पास जाने के लिए मदद कर रहा है, उतना सीखो आगे बढ़ते रहो। तत्तेनुकंपम सुषमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, धन्यवाद प्रभु ये परिस्थिति नहीं आती तो शायद आज मैं आप इस तरह से भक्ति नहीं कर पाता, धन्यवाद। बुरे से बुरे परिस्थिति में कुछ अच्छा चीज लेना, बुरे से बुरे व्यक्ति में सिर्फ जितना जरूरी अच्छा चीज है कुछ तो अच्छा होगा उतना ही ले लो बस। तो मैं सोच रहा था, ये भक्त मुझे बता रहे थे कि मेरे पिताजी से मैंने एक चीज सीखा प्रभु जी, इतने प्रेम से वो तैयारी करके वो पीते हैं अंग्रेजी शराब, हमको हरिनामामृत कैसा पीना चाहिए, हम लोग क्या ऐसा तैयारी करते हैं, राह देखते हैं कब सुबह होगा कब 5 बजेगा, वाह 15 मिनट पहले आके सेटिंग करना, आसन लगाया, टीवी के बदले भगवान का फोटो लगाया और भड़न के बदले कुछ महामंत्र का कुछ अच्छे अच्छे श्लोक रखा जिससे हमको थोड़ा प्रेरणा मिले, और उसके बाद भजिया के बदले और कुछ रखोगे जो भी है, कुछ अच्छा फोटो जिससे आपको प्रेरणा मिले, कुछ अच्छा कोटेशन हरिनाम के बारे में, या स्टिकर रखो, कुछ लोगों को स्टिकर रखे तो प्रेरणा मिलती, कुछ भी रख के तैयार करो, वाह अब मैं आस्वादन करने वाला हूं नामामृत, वाह अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करना मुझे, पी रहे हो हरे कृष्ण कुछ लोगों को अगर जप करते देखता है तो ऐसा लगता है यार क्या लूट रहा आनंद, मेरे को भी करना चाहिए, क्या कर रहा है तू, और अगर तो लगता है ये बेचारा क्यों इसको तकलीफ दे रहा है यार, क्यों कर रहा, छोड़ दे यार छोड़ दे माला छोड़ के जा कल तो अरे करना तो है ही, किसी तरह से हमको थोड़ा तो बुद्धि से समझ में आ गया है कि करना चाहिए, क्यों ना प्रेम से करो, क्यों ना उसमें हृदय डालो, पूरा लूटो, आनंद लो। और सही में ये यथा माम प्रपद्यन्ते, एक कदम भगवान की ओर लेते हैं, कृष्णा मैं रुचि नहीं है पर मैं प्रयास कर रहा हूं, वो प्रयास देखेंगे। जैसा वो चिड़िया ने प्रयास किया, समुद्र को खाली करना बड़ा मुश्किल है, पर जो चिड़िया जिसके अंडा समुद्र ने ले लिया था वो सिर्फ प्रयास की, तो जब गरुड़ जी आके बोले वापस हो गया, नहीं तो नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई। तो कहीं तो शुरुआत करो, नहीं नहीं एक दिन मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा बाद में बड़ा प्रोजेक्ट लेके, कुछ नहीं। अभी तुम जो कपड़ा पहनते हो ये कपड़ा भगवान के लिए पहन रहे हो ना, अच्छे तरह से धो के स्वच्छ कम से कम पहनो, तिलक लगा रहे हो प्रेम से लगाओ, जो भी कर रहे हो कोई नया चीज करने की जरूरत नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं यत करोषि यद अश्नाशी यद जुझोषी ददासी यत, अगर बच्चों के हम अपने बच्चों का देखभाल कर रहे हैं तो ऐसे करो कि कृष्ण जिससे प्रसन्न हो। सुबह उठ के दांत घिस रहे, दांत घिसते वक्त भी रूप अपना हरिभक्ति विलास में उठने के बाद लिखा गया, उठने से लेकर सोने तक सबकी चीज बताया गया। उठते ही तीन चीज बोलना चाहिए, कृष्ण 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 जोर से बोलना चाहिए तीन बार। क्यों? क्योंकि जब सोते हैं तो तमोगुण में रहते हैं हम लोग, तमोगुण से उठने के लिए कृष्ण 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 तीन बार बोलना, उसके बाद झुक के प्रणाम करना, धन्यवाद प्रभु आज जिंदा होके उठा हूं मैं, हो सकता है हार्ट अटैक होके मर गया होता, आपने एक और दिन मुझे एक उपहार दिया है आपकी सेवा के लिए, बहुत धन्यवाद। तो प्रणाम करो भगवान को, कृतज्ञता प्रकट करो, फिर दांत कितना बार घिसना चाहिए वो भी बताया, कैसा घिसना चाहिए वो भी बताया, किस लिए कर रहे हैं, ताकि अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करें सुबह उठकर। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, वो चेतना जब आएगी तो जो भी कर रहे हैं कुछ नया चीज करने की भी जरूरत नहीं, जो कर रहे हैं उसी को थोड़ा अच्छे ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए जो भी बोल रहे हैं ऐसे चीज बोलो जो भगवान प्रसन्न हो, जिससे ऐसी चीज मत बोलो जिससे भगवान प्रसन्न ना हो, ऐसे विचार मन में लाओ जो भगवान को प्रसन्न करे, ऐसे विचार मन में लाओ ही मत अगर भगवान प्रसन्न ना हो, ऐसे कार्य करो जिससे भगवान प्रसन्न हो। कहीं भी रहकर व्यक्ति कृष्ण भावना, लोग जेल में रहकर कृष्ण भावना भावित हो गए और वैकुंठ में रहकर वहां से पतन हो गया, अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब भक्ति को कहीं भी रोका नहीं जा सकता, कोई भी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता, कुछ नहीं है, प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था फिर भी उन्होंने प्रचार किया ना, ऐसा नहीं कि एक गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी के बिना कैसा, पैम्पलेट के बिना कैसा, पैसा नहीं है तो कैसा प्रचार करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं, और उसमें से एक विश्व संस्था खड़ा करना, एक चीज होनी चाहिए बस, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मैं स्वेच्छा से बड़े प्रेम पूर्वक और पूरी इंद्रियों को और मन लगाकर जो भी मैं कर रहा हूं वो आपको अर्पण करना चाहता हूं, बस जो भी मैं दिन भर करता हूं वो इस चेतना से करूं और इस भावना से करूं कि आप प्रसन्न हो, और उसमें मैं पूरा मन लगाकर पूरे ध्यान पूर्वक मैं करूं, यहां से शुरू करो बस। देवामृत महाराज बड़े सुंदर से बोल रहे, कुछ बड़े बड़े छलांग मार के पीएचडी करने की जरूरत नहीं, केजी के लेवल पे हो तो जो एबीसीडी पढ़ रहे हो उसको तो कम से कम प्रेम से करो, ध्यान से करो, पूरा हृदय लगाकर करो। जब अर्जुन से पूछा गया तो तीर लगाया उसने, सबको पूछते थे द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर को लगाया धनुष बाण, बोला क्या दिखता है तेरे को, एक तोता क्या चिड़िया पंछी एक मिट्टी का दूर में रखे पेड़ के ऊपर, बोले हाँ तैयार, परीक्षा ले रहे थे जो इतना सिखाया कितना सीखे तुम लोग, बोले क्या दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है, डाल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, तो बोला साइड में आता, दुर्योधन को बुलाया, तेरे को क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, आपके चरण कमल दिख रहे हैं। बोले बहुत अति भक्ति हो गया, साइड में खड़ा हो। भीम को बोला क्या दिख रहा है? दिख भी रहा है, सूंघ भी रहा है, अच्छा अच्छा खाना बन रहा है। बोले तू भी साइड में आ जा। अर्जुन को बोले तुझे क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैं दिख रहा हूं? नहीं दिख रहा है। डाल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अरे पंछी तो दिख रहा है ना? वो भी नहीं दिख रहा है। पंछी का आंख दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दिख क्या रहा है महाराज? बोले पंछी के आंख का जो एक बीच का जो गोला है उसके अलावा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। बोले शाबाश, निश्चित रूप से तू भेदेगा, चला मैच फिक्सिंग। पहले ही बोल दिया, करने से पहले ही बोल दिया यशस्वी होगा तू, क्योंकि एकाग्रचित्त होकर कर रहा है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, एक व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है, जो लिए हैं हमने कृष्ण के लिए, जितना हो सके उतना मैं प्रयास करूंगा, उसके बाद जो होगा वो प्रभु की इच्छा, प्रयास हमने पूरा किया। यहां से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे हर क्षण आप आनंद ले रहे हो, धीरे धीरे वो फैलेगा। जो आपका केवल माला, दो माला जो करते उसको आप प्रेम से करने रहे थे, बाद में अच्छा लगे और करेंगे, वो माला करने के बाद सेवा मांग रहे हैं, हे प्रभु आपको सेवा में लगाओ। तो जब जो भी करेंगे हम, कोई भी चीज लेंगे उसमें अपना हृदय डालेंगे, और भले यशस्वी हो या नहीं हो, वो हमारा, हमारी इच्छा थी कि ऐसा हो तो यशस्वी है, नहीं, प्रयास करो, यशस्वी हो या नहीं हो, प्रयास अगर पूरा किया है तो भगवान के लिए वही संतुष्ट है, भगवान की संतुष्टि वही है। अब हनुमान हो तो बड़ा ये बनाओ, पत्थर पहाड़ डालो, और गिलहरी हो तो चार रेती डालो, पर सेवा भाव से डालो प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति, और कुछ अपेक्षा नहीं, जस्ट प्रेम से करना है बस, बड़े ध्यान पूर्वक अच्छे तरह से करो। फिर कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है जो इस आनंद के सागर को आस्वादन करने से और लूटने से हमें रोक सकता है। तो यही चीज है भक्ति भाव। और इस समय जैसा ऐसा सब करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 हम देखेंगे ये भावना जो है उत्पन्न होगी, बढ़ेगी निश्चित रूप से, धीरे धीरे प्रगति होगी। कल हम चर्चा करेंगे कुछ और चीजें, कुछ और चार पांच अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते हैं, बहुत सरल सी चीजें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये सब सुन रहे हैं, सुनने तो आए हैं, क्यों ना अच्छे तरह से सुने, वैसे भी तो सुनना है, उसकी तैयारी, सुनने की तैयारी कब होती है? हमारे एक भक्त बता रहे थे, उनके मित्र जो हैं वो एयरफोर्स में फाइटर पायलट है, वो फाइटर पायलट, उनका एक नियम है एयरफोर्स में, और फाइटर पायलट मतलब उनका जो एयरप्लेन है वो सुपरसोनिक स्पीड, मतलब साउंड जिस स्पीड से जाता है ना, शब्द तरंगे, उससे भी ज्यादा स्पीड में जाते हो, माइल्स, कितना तो माइल्स पर सेकेंड, ऐसा माइल्स पर मिनट, ऐसा बहुत स्पीड होता है वो। और उसमें एकदम सतर्क होना चाहिए, एक क्षण के लिए अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो गड्ढे में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा वो प्लेन, और एक एक भी हजारों करोड़ रुपए होते हो एक एक प्लेन, प्लेन तो गया तो गया, एक फाइटर पायलट को ट्रेनिंग करने में करोड़ों करोड़ों रुपए जाते, और हमारे में 200, पूरे इंडिया में 200 फाइटर पायलट है बस, मतलब खास ऐसे गिने चुने, तो बहुत कम है। उन लोगों को खास बहुत बड़ा पगार मिलता है, 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है। उन लोगों का एक नियम है, प्लेन में बैठने के 16 घंटे के पहले एक बूंद शराब नहीं पीने सकते। अगर आप कल सुबह, आपको 8 बजे आपका फ्लाइट है, तो 8 और 8 मतलब पिछले दिन 4 बजे के बाद, दोपहर को 4 बजे के बाद आप एक बूंद शराब नहीं पी सकते, क्योंकि 350 कंट्रोल होते हैं, जैसे एक स्टीयरिंग व्हील होता है, ब्रेक होता है, गियर होता है, चार पांच होते हैं ना गाड़ी में, समझ लो 10 होते हैं, उन लोगों का 350 होता है, और सब 350 ध्यान से देखता रहना पड़ता है, और एक थोड़ा इधर हो गया तो कई और दिशा में चला जाएगा प्लान, और 200 मील के दूर से यहां से दबा के एक खिड़की के अंदर से वो लोग एक ये छोड़ सकते हैं एक मिसाइल को, एकदम प्रिसीशन, सेकेंड टू सेकेंड प्रिसीशन, और उनको मिनिमम 7 घंटा या 8 घंटा सोना ही पड़ता है। उधर झपकी ले लिया एक, करते 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 उठेगा तो स्वर्ग में या नरक में उठेगा वो, बस उतने स्पीड से जाता है ये। तो ये प्रभु जी बता रहे थे, हमारे मुरलीधर प्रभु, उनके मित्र हैं वो फाइटर पायलट, तो बोल रहे थे कि प्लेन की तैयारी वो लोग 16 घंटा पहले शुरू होता है, 8 घंटे पहले वो थोड़ा रेस्ट लेते हैं सब कुछ। इसी तरह से हमारा जो ये प्लेन है बैक होम बैक टू गॉड एट जपमाला, वो बोल रहे थे इसको क्यों ना हम पहले से तैयारी करें, पिछले दिन रात को शुरू होता है इसका, थोड़ा अच्छे तरह से हल्का सा खा के लाइट रख के थोड़ा जल्दी सो के स्वच्छ उठ के, नहीं तो उस समय जो क्रीम टाइम है फ्लाइंग टाइम, एक एक सेकंड के लिए उनको हजारों लाखों रुपया लगता है, क्योंकि उतना पेट्रोल जाता है उसमें, उसका स्पेशल पेट्रोल होता है। तो इस तरह से हमारा ये यात्रा है ना भगवत धाम की ओर, हर रोज जो हम लोग करते हैं, इट्स अ वेरी सीरियस फ्लाइट टाइम, तो उसमें हम लोग अगर ध्यान नहीं रहे कहीं तो जाएगा गाड़ी, पता भी नहीं चलेगा, बांदीपुर जी इधर कहाँ आ गया मैं, मेरे को तो लग रहा था मैं ऊपर जाने का, उधर आया कहीं और। तो इस तरह से कल हम चर्चा करेंगे कि कुछ टिप्स बताते हैं जिसके द्वारा ये भक्ति भाव हमारे हृदय में हम ला सकते हैं, और धीरे 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 एक उमंग या उत्साह और सही में आनंद या संतुष्टि जो हम कर रहे हैं उसी को ही अच्छे तरह से करके अनुभव कर सकते हैं, जिसके द्वारा फिर से जो माया की जो खटखटाहट है उसे हम आकर्षित ना हो और आगे प्रगति करते रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरिहर।